ये आकाशवाणी दिल्ली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी आवास खाली किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन स्टोर में गांधी जयंती के अवसर पर एक दिन में सबसे अधिक खरीदारी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कौशल, स्टार्टअप और उद्यमिता एक्सपो तथा इंडिया मशरूम डेज 2024 का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि श्री केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से जुड़ी सुविधाएं छोड़ने का फैसला भी किया था। उन्होंने बताया कि श्री केजरीवाल अब अस्थायी तौर पर पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉ अशोक मित्तल के दिल्ली में फिरोजशाह रोड स्थित सरकारी आवास में रहेंगे। वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि श्री केजरीवाल को समझना चाहिए कि बंगले बदलने से वास्तविकता नहीं बदल जाती। श्री सचदेवा ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता की कोई चिंता नहीं है और सिर्फ बंगले से मुंह है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और भाजपा बस मार्शलों को पुनर्बहाल करने से बच रही है। उन्होंने कहा कि पुनर्बहाली को लेकर कल होने वाली बैठक के लिए उपराज्यपाल ने समय नहीं दिया और भाजपा का कोई विधायक भी उपस्थित नहीं हुआ। श्री भारद्वाज ने कहा कि इस संबंध में हाल ही में दिल्ली विधानसभा सत्र में बस मार्शलों का मुद्दा उठा था, जिस पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पुनर्बहाली पर सहमति जताई थी।
कल हजारों बस मार्शल जो कि बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जो लोग बेरोजगार हैं, अकेले कमाने वाले थे अपने घर के, और आज उनके घर में कोई कमाई का साधन नहीं है, किराया देने का पैसा नहीं है, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, घर का राशन खरीदने के पैसे नहीं है। ऐसे हालात में हजारों की संख्या के अंदर पुरुष और महिला बस मार्शल वहां पे आए और उन्होंने गुहार लगाई, मगर एडी साहब उनसे वहां पे नहीं मिले।
वहीं भाजपा विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि वे 10,000 बस मार्शलों की नौकरी पुनर्बहाल करने के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल कल सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आतिशी से मुलाकात करेगा और पुनर्बहाली के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करेगा।
आप उनकी मदद करना चाहते हैं या उनके गले पे नमक छिड़क रहे? पहले उनको हटा दिया, उनकी सैलरी रोक ली, आज भी सड़कों पर बिठा रहे हैं, जलूस निकाल रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को, जो 1 साल से तो उनको हटाया था, आपको 1 साल पहले हटाया था आपने, अब चुनाव नहीं दे आते हुए देखते हुए लगा के ये पांचन पूछेंगे, हिसाब लेंगे कि हमारी नौकरी क्यों खराब की, इन्होंने धोखा किया।
दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि राजधानी के रोहिणी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के कारण कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार रोहिणी सेक्टर 19, 18, बादली और इससे सटे इलाकों में सोमवार को दिन में 10 बजे मरम्मत कार्य शुरू होगा, जो लगभग 20 घंटे तक चल सकता है और इस दौरान जलापूर्ति बाधित रहेगी। विभाग ने लोगों से जल भरकर रखने और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की है। हरियाणा में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा।
हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए इस बार 1031 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 930 पुरुष और 101 महिलाएं शामिल हैं। इस चुनाव में लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गढ़ी सापला किलोई से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उचाणा कला सीट से राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, झुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट और रेवाड़ी से चिरंजीव राव जैसे कुछ बड़े चेहरों का राजनीतिक भविष्य कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 2,03,54,000 से अधिक मतदाता हैं और चुनाव के सुचारू संचालन के लिए कुल 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे शेड, पानी की व्यवस्था, व्हीलचेयर मतदाताओं के लिए उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त लोगों की चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। चुनाव की मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर, आकाशवाणी दिल्ली।
पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि मतदान प्रक्रिया के दौरान पुलिस कड़ी नजर रखेगी ताकि लोग निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
करीब 3,350 हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ हैं, उन पर अतिरिक्त रूप से आधा सेक्शन रणनीति का अलग से लगाया जाएगा सभी लोकेशंस पर, और 5-6 लोकेशन मिला करके एक सेक्टर बनाया गया है और हर सेक्टर के ऊपर एक पेट्रोलिंग पार्टी तैनात रहेगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत के 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र में बनी चिप दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लगाई जाएंगी और मेड इन इंडिया चिप पूरे विश्व में उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत मोबाइल फोन के आयातक से निर्माता बन रहा है। भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। उन्होंने कहा कि भारत में इस क्षेत्र के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्था है, ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा सरकार की ताकत है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 में कहा कि वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2024 के सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% से और गिरकर वित्त वर्ष 2025 में 4.9% होने का अनुमान है। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि राजकोषीय अनुशासन के लिए प्रतिबद्धता केवल बॉन्ड के ब्याज पर नियंत्रण में मदद नहीं करेगा बल्कि अर्थव्यवस्था व्यापी उधार लागत को भी कम करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्ष 2023-24 में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 1,27,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। वे आज नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की 7वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने आईडेक्स प्रौद्योगिकी विकास कोष, अदिति योजना और मंत्रालय से संचालित विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।
भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ भी बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ को पार कर गया है, जिसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट प्राइवेट इंडस्ट्री से ही हुए। यह निश्चित रूप से हमारी अच्छी प्रगति है, लेकिन इसके बावजूद हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। जहां पर हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इस अप्रोच के साथ देखें, कैसे हम इम्पोर्ट को और कम कर सकते हैं तथा एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन स्टोर में एक दिन में सबसे अधिक खरीदारी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सर्वाधिक 2 करोड़ रुपए से अधिक के खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री हुई।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने खादी उत्पादों के बढ़ते चलन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खादी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने और उनके नेतृत्व में बीते 10 वर्षों से जारी चरखा क्रांति को दिया। श्री कुमार ने कहा कि बीते माह मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से त्योहारी मौसम में वोकल फॉर लोकल अभियान के अंतर्गत मेड इन इंडिया और स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की थी। इस अपील जनमानस पर व्यापक असर हुआ है। उन्होंने बताया कि इस बार गांधी जयंती पर 2,01,37,000 रुपए के खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री हुई। प्रादेशिक समाचार के लिए अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
गांधी जयंती के अवसर पर कनॉट प्लेस के खादी भवन के बिक्री की वर्षवार तुलना करें तो वर्ष 2021 में 1 करोड़ रुपए, वर्ष 2022 में 1 करोड़ 30 लाख रुपए, वहीं वर्ष 2023 में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के खादी उत्पाद बिके। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विश्वास जताया है कि अगर देश की 50% जनता कौशल प्राप्त कर ले तो देश तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगा। श्री तिवारी ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कौशल स्टार्टअप और उद्यमिता एक्सपो तथा इंडिया मशरूम डेज 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। श्री सचदेवा ने कहा कि देश में लोगों के पास कौशल है और उसे पहचानने की आवश्यकता है। एक्सपो में दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके बाहर के विभिन्न कॉलेजों के सहयोग से एक व्यापक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा मशरूम की खेती में अपनी अनूठी प्रगति और कौशल का प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री आतिशी आज नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों को डिग्री देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने छात्रों और प्रोफेसरों को मौलिक और बुनियादी अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया, जिससे राष्ट्र और लोगों की प्रगति के लिए नवाचार और आविष्कार विकसित होते हैं। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि देश के युवाओं को नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। राजधानी के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर निर्धारित रखरखाव कार्य के कारण येलो लाइन पर स्थित 2 स्टेशनों विधानसभा और सिविल लाइन्स पर रविवार सुबह 6:40 तक प्रवेश बंद रहेगा। डीएमआरसी के अनुसार विश्वविद्यालय से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम के लिए पहली ट्रेन सुबह 7:45 चलेगी, जिसका निर्धारित समय 6 बजे होता है। वहीं कश्मीरी गेट से समयपुर बादली के लिए पहली ट्रेन सुबह 6:52 पर चलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 5 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इनमें पाली भाषा भी शामिल है, जिसका उद्गम स्थल मगध क्षेत्र है। ये बौद्ध शास्त्रों की भाषा है जो पुरातन भारतीय आर्यवेद और संस्कृत से संबंधित है। बौद्ध भारतीय अध्ययन सांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ ने आकाशवाणी से कहा कि सरकार के इस कदम से पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
यह बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी महत्ता को पहचाना और इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। अब हमें उम्मीद है कि इससे पाली भाषा की पढ़ाई, शोध, उस ग्रंथ है उसमें महत्वपूर्ण बातें हमारी संस्कृति की और इतिहास की, उस पर प्रामाणिक प्रकाश पड़ेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए कृष्णोन्नति योजना को स्वीकृति दे दी है। दोनों योजनाओं को 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित व्यय के साथ लागू किया जाएगा। इसमें पीएम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 57,000 करोड़ रुपए से अधिक और कृष्णोन्नति योजना के लिए 44,246 करोड़ रुपए शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी आवास खाली किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन स्टोर में गांधी जयंती के अवसर पर एक दिन में सबसे अधिक खरीदारी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कौशल स्टार्टअप और उद्यमिता एक्सपो तथा इंडिया मशरूम डे 2024 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।